मेरे गुणी दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के रूप में मैं आप सबसे फिलिस्तीनी इसराइल के बारे में बात करूंगा, करने ही जा रहा हूं कह लीजिए, और भारत की नीति इनके प्रति क्या रही है। बेसिकली मेरे आज का मुख्य विषय केवल इसी पर फोकस्ड होगा। जो दूसरी घटनाएं हैं, छोटी मोटी खबरें हैं, उन्हें मैं आज आपके सामने नहीं रख रहा हूं, इनकी चर्चा हम लोग अगले सप्ताह के पहले दिन करेंगे। तो आइए सीधे विषय पर आते हैं। फिलिस्तीनी और इसराइल के बीच जो संघर्ष है, जो विवाद है, इसके बारे में छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही, लेकिन मैंने खासकर ऐसे बिंदु आपके सामने लाने की कोशिश की है जो आपको इसे समझने में मदद करेंगे, और मुझे लगता है कि शायद आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। अगर आप मुझे बता सकेंगे तो मुझे मदद मिलेगी। क्या है इनमें विवाद का कारण, इनका इतिहास क्या रहा है? मैंने आप सबको बताया था कि इस पर ढेर सारे YouTube पर लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं और अखबारों में भी काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है, तो बातें आपके दिमाग में स्पष्ट हो गई होंगी। दोस्तों, अब हम भारत के बारे में बात करते हैं, और भारत के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा यूरोप के बारे में देख लेते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ भी सुनी होगी कि इसराइल के समर्थन में यूरोपीय देश खासकर ज़्यादातर हैं। अमेरिका ने तो शुरू में ही कह दिया कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, और इसराइल यानी कि वही कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है वो गाजा पट्टी पर, तो वो यही कर रहा है, अपनी रक्षा कर रहा है, और डेफिनेटली हर राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। यूरोप के ज़्यादातर देश इसराइल के पक्ष में हैं। आप यूं मान लीजिए कि पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई, इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर के। पहला ये कि यूरोप वगैरह के देश हैं, अमेरिका वगैरह हैं, ये बेसिकली इसराइल के पक्ष में हैं, और दूसरे अरब राष्ट्र हैं जो फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। और क्यों हैं, अब आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन अब धीरे धीरे हो ये रहा है कि जो अरब राष्ट्र हैं उनमें से कुछ देश अब इसराइल के साथ अपने संबंध बेहतर कर रहे हैं। खैर, चलिए एक अलग मुद्दा है। दोस्तों, यूरोप जो इसराइल के पक्ष में है उसके पीछे दो तीन बड़े ठोस बिंदु बताए जाते हैं। पहला तो यह है कि यूरोप के देश नहीं चाहते हैं कि ये जो अरब राष्ट्र है और फिलिस्तीनी इतने शक्तिशाली हो जाएं कि वहाँ एक इस्लामिक राष्ट्रवाद उभरने लगे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर इस्लामिक राष्ट्रवाद उभरा तो हो सकता है कि विश्व में शांति की स्थापना करने में फिर दिक्कत आए। चलिए, उनका एप्रिहेंशन है, सच है क्या है जो भी है, लेकिन उनके दिमाग में कहा जाता है कि ये बात है। दूसरी बात यह कि आप जानते हैं कि जो अरब राष्ट्र हैं ये तेल के भंडार हैं, और यदि यहां सब शांति अमन चैन सब कुछ बना रहा तो हो सकता है कि आपस में मिलकर के ये तेल के बारे में कुछ ऐसा आधिपत्य स्थापित कर ले कि तेल की सप्लाई ही प्रॉब्लम होने लगे यूरोपीय राष्ट्रों को। और कल्पना करके देखिए कि अगर तेल की सप्लाई रुक जाती है, कम हो जाती है, तो यूरोपीय राष्ट्र जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं उनका क्या हाल होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिन देशों को अपने हथियार बेचने हैं उनके लिए यही एक उपाय रह जाता है कि कुछ देश आपस में लड़ें ताकि उनको हथियारों की जरूरत हो, तो यह भी एक पॉइंट दिया जाता है। लेकिन चलिए, अगर हम इसको किनारे भी कर देते हैं तो दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है तेल की आपूर्ति और दूसरा इस्लामिक राष्ट्रवाद का उभार। जब हम भारत के संदर्भ में इसे देखते हैं, जो हमारे लिए एग्जामिनेशन की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आपको इतिहास में जाना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी कोशिश सीधे पॉइंट्स बता देने की नहीं होती है, और मैं जानता हूं कि स्टूडेंट को शायद मेरी ये बात उतनी सूट नहीं करती होगी, क्योंकि आदत उनकी पॉइंट्स पढ़ने की है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके अंदर एक दृष्टि विकसित कर सकूं। तो कैसे इसके बारे में दृष्टि विकसित होगी, तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि क्या आपको भारत की विदेश नीति का ज्ञान है। विदेश नीति के, हर देश के विदेश नीति के अपने आधार स्तंभ होते हैं। एक तो वैश्विक विदेश नीति के ही आधार स्तंभ है कि विश्व किस तरह से अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है, इस पर ऑनलाइन लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर इस पर भी ऑनलाइन क्लासेस को प्रोवाइड की गई है कि भारत अपनी विदेश नीति का निर्धारण कैसे करता है, उसके क्या क्या स्तंभ हैं, राइट? क्योंकि जब आप उस स्तंभ को समझ लेते हैं, यानी कि बेसिक्स को समझ लेते हैं, तो जो अभी फिलिस्तीन और इसराइल के मामले में भारत का जो स्टैंड है वो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, देखिए, कोई भी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल स्टैटिक नहीं होती, जड़ नहीं होती, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। याद करने की कोशिश कीजिए कि 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिलिस्तीन का विभाजन किया गया और इसराइल बना दिया गया। भारत के लिए इसे स्वीकार करना उस तरह से मुश्किल था क्योंकि भारत किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता का समर्थक है, भारत किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता का समर्थक है, यह उसके विदेश नीति का अंग है। तो भारत को इसराइल का बनना तो आप यूं कह लीजिए रास नहीं आया, तो ऐसे में स्वाभाविक था कि भारत फिलिस्तीन के ज्यादा नजदीक होता, और भारत ऐसा था भी, भारत ने बिल्कुल यही किया भी। तो दोस्तों, मिसेस गांधी के समय में तो भारत और फिलिस्तीन के संबंध बहुत ज्यादा आप यूं कह लीजिए कि निकट के हो गए थे। उसी समय फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन भी बना था, बकायदे भारत ने उसे मान्यता दी, सोचिए मान्यता दे रहा है भारत फिलिस्तीनी के मुक्ति संगठन को, और बकायदे दिल्ली में अनुमति दी गई कि आप अपना ऑफिस खोलिए, दिल्ली में इनका ऑफिस खुला। और आपको याद मालूम होना चाहिए कि नेहरू जी ने बकायदे जब इसराइल की स्थापना की तो इसका विरोध किया था, क्योंकि नेहरू स्वतंत्रता के, डेमोक्रेटी के बहुत बड़े वैश्विक स्तर के समर्थक माने जाते थे। हम फिलिस्तीन के ज्यादा नजदीक हैं, और ये लंबे समय तक चलता रहा। आप कह लीजिए कि नरसिंह राव जी जब तक हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे तब तक ये चलता ही चलता रहा, लेकिन बाद में फिर इसमें बदलाव आने लगा। और देखिए ऐसा होता भी है, इस बीच में क्या है कि इसराइल एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित भी हो गया, इसराइल का विरोध जो दुनिया के स्तर पर हो रहा था वह भी थोड़ा सा कम होने लगा, और भारत को भी लगा कि नहीं, खासकर इसराइल और फिलिस्तीन के मामले में उसे अब एक संतुलित नीति अपनानी चाहिए। इस बीच में फिर आप देखते हैं कि बकायदे हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो फिलिस्तीन की यात्रा पर गए, वो पहले प्रधानमंत्री थे जो वहाँ की यात्रा पर गए, वहाँ के भी जो हैं लीडर्स हैं वो हमारे यहाँ बकायदे यात्रा पर आए। इसका मतलब है कि धीरे 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 संबंध सामान्य होने लगे, और अब इसराइल एक तरीके से जो सामरिक अस्त्र और टेक्नोलॉजी देने वाला भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बन चुका है, और भी दूसरे हैं जैसे वाटर प्योरिफिकेशन को देखिए और खासकर कृषि प्रणाली को देखिए, तो इसराइल से हम काफ़ी कुछ चीज़ें ले रहे हैं। तो अब जो वर्तमान स्थिति है, भारत अब इसमें क्या करे, तो आप पाएंगे कि भारत ने, देखिए ऑब्जर्व करने की बात है कि बहुत ही अपनी संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब उसे थोड़ा सा समझ लीजिए इस बैकग्राउंड के बाद। भारत ने क्या किया है कि जो हमास बकायदे जो अटैक कर रहा है गाजा से, बकायदे इसराइल को निशाना साधकर जो रॉकेट फेंक रहा है यानी कि हमास, उसका भारत ने विरोध किया, कड़ा विरोध किया कि नहीं, हमास को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या वो फिलिस्तीन का विरोध कर रहा है? नहीं, इसके जरिए बेसिकली भारत एक आतंकवादी संगठन के कार्यों का विरोध कर रहा है, और आपको मालूम है कि भारत आतंकवाद का एक तरह से कितना बड़ा विरोध करने वाला राष्ट्र है दुनिया में, हर मंच पर भारत इसका विरोध करता है क्योंकि भारत खुद इसका विक्टिम बना हुआ है। तो हमास की इस एक्टिविटीज का बकायदे भारत ने विरोध किया है, साथ ही साथ उसने यह भी कहा है, बकायदे सरकारी वक्तव्य है कि इसराइल और फिलिस्तीनी जो सरकारें हैं वो आपस में सीधा संवाद करें, यानी कि वो सीधे सीधे इसराइल की भी आलोचना नहीं कर रहा है कि इसराइल क्यों गाजा पट्टी पर रॉकेट भेज रहा है, वो हमला कर रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, ये गलत है, तो इसराइल का भी वो सीधे विरोध नहीं कर रहा है। तो अब आप देखिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कारण है कि वो सीधे सीधे फिलिस्तीन का विरोध नहीं कर पा रहा है। इसराइल से हमारे निकट के संबंध हैं लेकिन हम सीधे सीधे इसराइल के पक्ष में खड़े नहीं हो पा रहे हैं जैसे कि यूरोपीय राष्ट्र खड़े हो रहे हैं। दोस्तों उसके कारण है, और कुछ कारण तो वही जो यूरोपीय देशों के हैं वो भारत के भी हैं, लेकिन भारत के कुछ अपने कारण भी हैं। अब आप देखिए कि भारत के अपने क्या कारण हैं। दो तीन सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो यह कि अगर भारत सीधे सीधे इसराइल के पक्ष में खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो अरब राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को खराब कर रहा है, क्योंकि अरब जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। अब आपको सोचना ये होगा कि क्या हम अरब राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को खराब करना गवारा कर सकते हैं, या हमें ऐसा करना चाहिए, या अब आपको सोचना पड़ेगा कि अरब देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, तेल का मामला तो है ही, अरब राष्ट्रों से हम कितना तेल ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारी ज़मीन के काफ़ी निकट है तो वहाँ का तेल हमें सस्ता पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के मामले में। तो तेल हमारी भी ज़रूरत है जैसे यूरोपीय राष्ट्रों की ज़रूरत है, उसमें बाधा आ सकती है। आपको ये भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अरब राष्ट्रों में के यहाँ कितने भारतीय काम कर रहे हैं, कितने भारतीय। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि जब कोरोना का जब फर्स्ट इसकी जो फर्स्ट लहर आई थी तो उसमें किस तरीके से भारत ने उनकी मदद की थी, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया था, और अभी भी कुछ अरब राष्ट्रों ने भारत को मदद सेकेंड वेव में की है। तो वहाँ हमारे कामगार हैं, अगर हमारे संबंध खराब हो गए तो हमारे ये जो कामगार हैं इनका क्या होगा। वो बहुत बड़ी मुद्रा भारत भेजते हैं और इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट हमारा मिला हुआ है, इस पर भी असर पड़ जाएगा। फिर अरब राष्ट्रों का अपना एक संगठन है, पाकिस्तान उसका सदस्य है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब देखिए, सीधी सी बात है कि अगर अरब राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं तो पाकिस्तान हमारे विरुद्ध ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, इस फोरम का वो उपयोग कर सकता है भारत के खिलाफ। तो स्वाभाविक है कि भारत ऐसा नहीं चाहेगा, तो अरब राष्ट्रों के साथ भी इसे संबंध बनाकर रखना है। तो दोस्तों, ये कारण है जिसकी वजह से भारत सीधे सीधे इज़राइल का पक्ष नहीं ले सकता। और देखिए, एक दूसरा भी कारण है, इज़राइल ने फिलिस्तीन की ढेर सारी जमीन ऑक्युपाई कर रखी है। अब इसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से सोचिए, बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब जितनी बार लड़ाइयाँ हुई हैं फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में, या कह लीजिए अरब राष्ट्र और इसराइल के बीच में, तो हर बार इसराइल ने कुछ न कुछ जमीन उनकी अपने कब्जे में ले ली है। और अगर अब भारत इसराइल का सीधे सीधे समर्थन कर देता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये मैसेज जाएगा कि जो भारत है अगर कोई दूसरे की भूमि हथिया लेता है तो उसका समर्थन कर रहा है, राइट? और पाकिस्तान ने भी हमारी जमीन हड़प रखी है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हम कहते हैं POK, तो क्या हम उसका भी समर्थन करेंगे? तो हम तो फंस जाएंगे कि हम इसराइल का समर्थन कर रहे हैं और अपने लिए हम डिमांड कर रहे हैं। तो वहाँ एक द्वंद्व की स्थिति हो जाएगी ना, टकराव की स्थिति हो जाएगी। इसलिए भी भारत को फिलिस्तीनी और इसराइल के मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इतनी बातचीत के बाद शायद अब आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में इस इशू को लेकर के क्लैरिटी आ गई होगी, और अखबारों में भी जो कुछ आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो मुझे लगता है कि उससे और भी ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं रवि नारे खापुर बिहार से और शक्तिदान चरण, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।